राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य स्तोत्र शास्त्री श्रीमदेश वाहन ग्रीस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रोफेसर कंपाउंडर आचार्य सेवदी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेम आनंदे ऑल ग्लोरी सिमिल्ड बोटीज ऑल ग्लोरी सिमिल्ड बोटीज ऑल ग्लोरी सिमिल्ड बोटीज ऑल ग्लोरी श्री गुरु एंड गोरांगा। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या 55। सब लोग निकालिए मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामं सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामं सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामं सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामं सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। शब्दार्थ बोलिए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा प्रजहाति त्यागता है यदा जब कामान इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं सर्वान सभी प्रकार की पार्थ हे प्रथापुत्र मनहगतान मनोरथ को आत्मने आत्मा की शुद्ध अवस्था में एवं निश्चय ही आत्मना विशुद्ध मन से तुष्ट संतुष्ट प्रसन्न स्थित प्रज्ञ अध्यात्म में स्थित तदा उस समय तब उच्यते कहा जाता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान ने कहा हे पार्थ जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो आप लोग यहां धागा लगाकर प्रार्थना निकालिए मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकयं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए। श्लोक समझेंगे। भगवान कह रहे हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। भगवान कह रहे हैं यदा जिस समय वो त्याग देता है उन कामनाओं को जो मनोगत हैं, मन के अंदर घुसी हुई हैं, बहुत सी कामनाएं मन के अंदर घुसी हुई हैं, तो उनको जब त्याग देता है तो फिर वो स्थिर प्रज्ञ कहलाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जब तक कामनाएं मन के अंदर घुसी हैं तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, बुद्धि चंचल रहती है। तो कामनाओं को यानी भौतिक कामनाएं जो इंद्रिय तृप्ति कामनाएं हैं उनको जब वो त्याग देता है, मन से त्याग देता है, तो स्थिर बुद्धि होता है। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, तो अपने अंदर ही अपने द्वारा संतुष्ट है, आत्मा में ही आत्मा के द्वारा संतुष्ट है। तो एक आत्मा का मतलब जीवात्मा और दूसरा आत्मा का मतलब मन। हा? तो अपने स्थिति में यानी अपने स्वरूप में जिसका मन संतुष्ट है तो वो स्थिर प्रज्ञ कहलाता है, स्थिर बुद्धि कहलाता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। ये श्लोक श्रीमद् भागवत का है, पांचवा स्कंद और 18वां अध्याय और श्लोक संख्या 12। श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद और 18वां अध्याय श्लोक संख्या 12। श्रीमद् भागवत के शब्द हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा हरावा भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। तो जिसके अंदर भगवान की अकिंचना भक्ति है उसके अंदर देवताओं के सभी गुण आ जाते हैं। हरावा भक्त से कुतो महद्गुणा, और जो भगवान का भक्त नहीं है उसके अंदर अच्छे गुण कैसे हो सकते हैं ना? जो भगवान का भक्त नहीं है उसके अंदर अच्छे गुण कैसे हो सकते हैं, मतलब हो ही नहीं सकते ना? क्यों? मनोरथेना सती धावतो बही, मन के रथ के द्वारा वो तो भागता रहता है बाहर के संसार में, है ना। मनोरथ, मनोरथ का मतलब मन का रथ, मन का रथ बहुत तेजी से चलता है ना। तो मनोरथ है ना सती, असती, असती माने गलत रास्ते में भागता रहता है ना। तो मन के रथ पर बैठ करके वो भागता रहता है तो अच्छे कौन हो कैसे सकते हैं, यानी बुद्धि स्थिर कैसे हो सकती है, हैं? लेकिन जो भगवान का भक्त है उसके अंदर अच्छे गुण आ जाते हैं और सब अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं, है ना। तो ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, और चूंकि श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में मनोरथ की बात की गई है, मन के रथ के द्वारा भाग रहा है ना, और आज के श्लोक में भगवान भी कहते हैं मनोगतान, कामान मनोगतान, मन में प्रविष्ट हुई कामनाओं को त्याग देता है ना। जब मन के अंदर कामनाएं प्रविष्ट हो जाती हैं तो मन का रथ बहुत तेजी से भागता है ना। तो अगर मन के रथ को रोकना है तो उसमें कामनाएं जो है निकाल देना चाहिए। जो कामनाएं हैं ये मन के रथ को भगाती हैं, बहुत तेजी से भगाती हैं, तो फिर बुद्धि कैसे स्थिर रहेगी, है ना। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, फलतः यहां ये ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। मनोधर्म, क्योंकि जो विषय वासनाएं हैं ये भौतिक संसार में जो जीव कल्पना करता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, ये वास्तव मनोधर्मी है। मनोधर्मी का मतलब एक मानसिक कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। मानसिक कल्पना, जैसे कि हरिण देखता है रेगिस्तान में जहां पानी नहीं है, क्या है, बालू, और चमक रही है सूर्य की किरणों से, तप रही है बालू, मतलब आग समझो, सूर्य की किरणों से बालू में आग पैदा हो रही है और उसको दिखाई दे रहा पानी वहां पर, है ना। और वो जितने पास जाता है तो कुछ निश्चित दूरी पर वो उसको पानी दिखाई पड़ता है, वो जितना आगे भागता जाता है तो वो उतनी दूरी पर जो ना पानी दिखाई देता है उसको, और वो सोचता है कि बस अब मैं इतनी दूरी चलूंगा तो मुझे पानी मिल जाएगा, तो ऐसे भागता रहता है और मर जाता है, ये पानी वहां है ही नहीं, चाहे जितना भी दूर भागे लेकिन वो पानी हमेशा उतनी दूरी पर उसको दिखाई पड़ता है, लेकिन पानी नहीं है वो। वहां पर क्या, आग, बालू में आग चमक रही है ना। तो इसको कहते हैं मनोधर्मी, मनोकल्पना। इस भौतिक संसार में जो दिखाई दे रहे हैं, जो विषय सुख दिखाई दे रहे हैं, तो वो सुख नहीं है, लेकिन वो दिखाई देते हैं। और जो जीव है वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, कर्म करता रहता है, कर्म करता रहता है, इस आशा से कि मैं आगे चल करके सुखी हो जाऊंगा, है ना। लेकिन वो सुखी नहीं हो सकता है ना। तो इसी को कहते हैं माया। माया उस जीव को हमेशा आश्वासन देती रहती है कि अब तुम सुखी हो जाओगे, अब तुम सुखी हो जाओगे, इतना कर लो और फिर तुम सुखी हो जाओगे, बस इतना और कर लो तो तुम सुखी हो जाओगे, है ना। लेकिन जीव कभी सुखी नहीं होता है। तो फिर त्यागना ही पड़ेगा। सबसे अच्छा यही है कि इस सुख की कल्पना को त्याग दो। आत्मनियम आत्मना तुष्ट, तो भगवान की कथा में संतुष्ट हो जाओ, भगवान के श्रवण कीर्तन में संतुष्ट रहो, है ना। तो स्थिर बुद्धि, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, लक्ष्य निश्चित हो जाएगा जीवन का। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है। कृत्रिम साधन का मतलब बनावटी साधन, बनावटी। अगर आप भगवान की भक्ति के अलावा कोई दूसरा उपाय करें कि भाई हम ये कामनाओं को त्याग दें, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि जब तक आपको ऊंचा आस्वादन नहीं मिलता है, तब तक वो जो इच्छा है, भोगों की इच्छा है, उसको कोई त्याग नहीं सकता, है ना। तो बनावटी उपाय से कोई व्यक्ति सोचे कि मैं भोगों की इच्छा को त्याग दूं, तो त्याग नहीं सकता। लेकिन जब उसे भक्ति का रस प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति का रस प्राप्त होता है, तो फिर वो विषय रस को त्याग देता है, है ना। तो इसलिए कहा गया आत्मनियम आत्मना तुष्ट, वो अपने अंदर संतुष्ट होता है भगवान के द्वारा। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो, तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। तो फिर उनको त्याग दबाने की जरूरत नहीं है, बिना प्रयास के ही वो भौतिक कामनाएं दब जाएंगी, है ना। कैसे दब जाएंगी, क्योंकि आपको ऊंचा सुख प्राप्त हुआ, आपको ज्यादा, आपकी इच्छा है मान लीजिए 10 रुपए पाने की, है ना, और आपको मिल गए 1000 रुपए, तो फिर 10 रुपए पाने के लिए आप क्यों परिश्रम करोगे। बिना परिश्रम के आपको 1000 रुपया अगर मिल रहा है, तो 10 रुपए पाने के लिए आप परिश्रम क्यों करोगे, है ना। तो इसी प्रकार से भौतिक संसार के जो सुख हैं, तो उनसे बहुत करोड़ों गुना सुख भगवान की भक्ति में मिल रहा है, और बैठे बैठे मिल रहा है, तो फिर परिश्रम क्यों किया जाए संसारी सुख पाने के लिए। तो बिना प्रयास के वो विषय वासनाएं दब जाती हैं, अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि ये भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा यानी महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। तो श्लोक में भगवान कहें आत्मनियम आत्मना तुष्ट, अपने अंदर अपने द्वारा संतुष्ट है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि वो इस बात में संतुष्ट है कि मैं भगवान का दास हूं, वो इससे ज्यादा वो नहीं चाहता है कि नहीं नहीं मुझे भगवान का पद प्राप्त हो, है ना, मैं भगवान का दास हूं, इस बात से बहुत प्रसन्न है। जैसे नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में जो है घूमते थे, नवद्वीप में घूमते थे, और प्रसन्न होकर के क्या कहते थे कि जो निमाई पंडित हैं नवद्वीप में, वो मेरे स्वामी हैं, ये कह करके प्रसन्न रहते थे, और यही बोलते रहते थे कि नवद्वीप के जो निमाई पंडित हैं वे मेरे स्वामी हैं, है ना। नित्यानंद प्रभु, नित्य आनंद,
सदा आनंद में डूबे रहते हैं। इस बात से कि जो ना निमाई पंडित मेरे स्वामी, निमाई पंडित मतलब चैतन्य महाप्रभु, ना कलयुग में निमाई पंडित हैं चैतन्य महाप्रभु, द्वापर में कृष्ण हैं और त्रेता में रामचंद्र हैं, है ना। तो वही कलयुग में निमाई पंडित हैं। तो आत्मतुष्ट रहता है अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर। शाश्वत दास, शाश्वत दास का मतलब क्या है? कभी ऐसा नहीं है कि भाई आगे चल करके पदोन्नति होगी और वो जो है ना मालिक बनेगा, ऐसा नहीं है। इस भौतिक संसार में होता है कोई कंपनी का जो है ना मैनेजर होता है या नौकर होता है, आगे चल करके कंपनी का मालिक शायद बन जाए किसी कारण से, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, भगवान के राज्य में ऐसा नहीं है। भगवान का जो पद है वो कभी बदलता नहीं है। भगवान हमेशा भगवान के पद में रहते हैं और जो उनके दास हैं वो हमेशा दास के पद में रहते हैं, है ना। तो ये इस तरह का जो है ना विचार नहीं है, इस प्रकार का सिद्धांत नहीं है कि आगे चल करके जैसे बच्चा होता है बड़ा होता है तो वो भी पिता बनता है आगे चल करके, तो ऐसे कभी हम भी भगवान बनेंगे, है कि नहीं। तो ये जो विचार है ये गलत है। ये मन में जो है ना अगर इस प्रकार के विचार आते हैं कि कभी हम भी भगवान बनेंगे, है ना, तो ये जो है अपराध है ना। क्योंकि ये जो ना ये मन की कल्पना है, है? कि कभी जो ना हम भगवान बनेंगे या कभी हम भगवान थे, है? ये इस प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, और जो अभी भगवान है वो पहले कभी भगवान नहीं थे, ये भगवान जो अभी हैं वो आगे चल के भगवान नहीं रहेंगे, है ना। भगवान का पद नहीं बदलता, है ना। और हम या तो हम भगवान के दास बनते हैं या फिर क्या माया के दास, या तो भगवान के दास या फिर माया के दास, है? जो दास है वो दास ही रहेगा, है कि नहीं। जैसे कि नागरिक होता है ना, तो वो या तो सरकार के कानून का पालन करे और नहीं तो फिर जेल के अंदर सरकार के कानून का पालन करना पड़ता है। उसी प्रकार से दास है, जीव दास है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वो अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। हाँ, यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। आत्मन ये आत्मना तुष्ट, मतलब कहने का यह है कि बाहरी चीजों में जो है ना उसकी कोई रुचि नहीं होती है कि बदलें। लोगों को हमेशा बाहरी चीजों में अपनी स्थिति बदलनी पड़ती है, उब जाते हैं, है ना। पांचवें अध्याय में एक श्लोक है, आप लोग निकालिए, बाहिस पर शेष असक्त आत्मा, श्लोक संख्या 21 है। श्लोक संख्या, हाँ, श्लोक संख्या 21 है, पेज नंबर 196। बाह्य स्पर्श से असक्त आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सब ब्रह्म योगी उक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु तो सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है, है? तो मतलब विन्दति आत्मनियत सुखम, अपने अंदर उसे कुछ सुख का अनुभव होता है। अब अपने अंदर कुछ सुख का अनुभव होता है, वो कोई व्यक्ति जाने ना जाने, लेकिन इतना समझो कि बाहर की चीजों में जो है ना उसकी रुचि नहीं होती है। बाहर की चीजें लोग जो है ना बहुत महत्व देते हैं बाहर की चीजों को, जैसे सिनेमा देखना, है ना। अभी तो इतने ज्यादा वे आश्रित हैं बाहर की चीजों में कि वे सोचते हैं कि जीना ही संभव नहीं है, हा? फिर कैसे जिएंगे? अगर सिनेमा नहीं देखेंगे तो कैसे जिएंगे? क्लब में नहीं जाएंगे तो कैसे जिएंगे, है ना? तो उनका तो ये जो है ना ये जीवन है, डिस्को डांस, है ना? तो बहुत सी चीजें हैं ऐसी। लेकिन जब वो देखते हैं कि हरे कृष्ण के जो भक्त हैं ये ना तो नशा करते हैं और ना व्यभिचार करते हैं, ना मांसाहार करते हैं, है? तो वे लोग सोचते हैं कि पता नहीं फिर इनका कैसा जीवन है। वो सोचते हैं कि फिर ये लोग जो है कुछ है, मतलब बड़े उदास होंगे, बड़े दुखी होंगे, है? लेकिन प्रसन्न भक्तों के चेहरे प्रसन्न होते हैं, है ना? तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य होता है लोगों को ये देख करके कि लोग ना तो सिनेमा देखने जाते हैं और ना जो है ना ये सब चीजें जो बाहर की जो सुख प्राप्त करने की जो चीजें हैं उनको नहीं प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर क्यों ये जो ना प्रसन्न रहते हैं, कैसे प्रसन्न रहते हैं? ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य कि हरे कृष्ण आंदोलन ने पैदा कर दिया लोगों के दिमाग में। रूस की सरकार का तो यही कहना था कि स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है मांस खाना, शराब पीना,